नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 7 जिलों की 142 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षा बल रूट मार्च चला रहे हैं। पहले चरण में 93% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
मतगणना 4 मई को केरलम, असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में सभी प्रमुख नगर निगमों में जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जनादेश से राज्य और पार्टी के बीच संबंध और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने एक बार फिर सुशासन की राजनीति और राज्य सरकार के विकास कार्यों में भरोसा व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर लोगों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 12 मई को होंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। उम्मीदवार 4 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया 13 मई तक पूरी कर ली जाएगी। परिषद के कुल 9 सदस्य 13 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे हरदोई जाएंगे और गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री काशी में एक रोड शो में शामिल होंगे और आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। श्री मोदी ने महिला सम्मेलन को संबोधित किया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रोहतांग स्थित अटल सुरंग का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगातार बिगड़ते मौसम, तेज हवाओं, बारिश और बर्फबारी की संभावना के कारण ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की बौद्धिक संपदा क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए नवाचार और बौद्धिक संपदा का मिलकर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक नए विचार को सुरक्षित संपदा में बदलने का आह्वान किया। कल नई दिल्ली में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के समापन सत्र में श्री गोयल ने नव प्रवर्तकों, विद्यार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों से पेटेंट, ट्रेडमार्क और अन्य बौद्धिक संपदा उपायों के जरिए विचारों का पंजीकरण कराने का आग्रह किया। श्री गोयल ने खेलों से संबंधित बौद्धिक संपदा पंजीकरणों के लिए 3 वर्ष तक शुल्क माफ करने की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने घोषणा की कि वो 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग हो जाएगा। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक की पकड़ कमजोर हो सकती है। यूएई का ये निर्णय काफी समय से चर्चा में था क्योंकि वो ओपेक के उत्पादन कोटे से असंतुष्ट था। उसके अनुसार तय कोटा कम होने के कारण वो अपनी इच्छानुसार दुनिया को ज्यादा तेल नहीं बेच पा रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। वहीं कल एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।